नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। जमानत तो मनीष सिसोदिया को मिली, लेकिन फटकार उस मोदी सरकार को मिली है जिसकी एजेंसियां जेल में रखने के लिए एक के बाद एक मुकदमे दायर करती रहती हैं और तरह तरह के तरीके अपनाती रहती हैं ताकि जमानत ना मिले। कानून की खामियों और प्रावधानों का तरह तरह से उपयोग दुरुपयोग कर वैसे लोगों को जेल में डाले रखने का प्रबंध करने में इन एजेंसियों को लगा दिया गया लगता है, जिन्हें सरकार पसंद नहीं करती, जो सरकार के आलोचक हैं, विपक्ष के नेता हैं। एक नहीं, अब आपके सामने अनेक फैसले हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि ईडी, सीबीआई, एनआईए को कैसे फटकार पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी कितनी सख्त आलोचना की है। यह हाल है उस एजेंसी का जो देश की केंद्रीय एजेंसी है। इसकी क्या साख रह गई है आज अदालत से लेकर जनता की निगाह में। कोर्ट में ईडी की हालत देखकर मेरा सुझाव है कि ईडी का नाम इजी रख देना चाहिए। जिसके लिए किसी को भी जेल में डाल देना इजी हो, उसका ही नाम ईडी हो।
मनीष सिसोदिया जी की जमानत जोरदार तमाचा है तानाशाही के ऊपर, हिटलर शाही के ऊपर और मोदी सरकार के जुल्म के ऊपर। 17 महीने आपने एक ऐसे व्यक्ति को जेल में रखा जिसके खिलाफ एक सबूत नहीं था, एक रुपए की पैसे की बरामदगी नहीं हुई, कोई जमीन जायदाद का कागज नहीं मिला, गांव खोद डाला, बैंक खोद डाला, घर खोद डाला, कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन ईडी वाले, सीबीआई वाले तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 17 महीने आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास किया, मनीष सिसोदिया कैसे जेल में रहे। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला न्याय व्यवस्था की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और दिल्ली और देश के लोगों की भावनाओं की जीत है। पूरा देश ये मानता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत और अनुकरणीय काम मनीष सिसोदिया ने किया और आपने ऐसे व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल दिया।
आज के फैसले से एक बार फिर इन एजेंसियों के नकारेपन का चेहरा उजागर हो गया है। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के वी विश्वनाथन ने बेल ना देने को लेकर ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक को सुनाया है। 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा और फिर 4 जून को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने सिसोदिया को जमानत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून के फैसले को भी पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई ने कहा कि सवाल है कि क्या ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस बात पर विचार भी किया है कि ट्रायल में देरी हो रही है, हमारी नजर में इसे अनदेखा किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि हमने महसूस किया है जमानत देने के मामलों में निचली अदालतें सेफ खेल रही हैं, ओपन एंड शट मामलों में भी जमानत देने के नियम की कई बार पालना नहीं होती, इसके चलते सर्वोच्च न्यायालय के पास जमानत याचिकाओं का ढेर लग जा रहा है। समय आ गया है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट समझे कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। यह कोई मामूली बयान नहीं है, इसकी कीमत हम और आप चुका रहे हैं, विपक्ष के नेता चुका रहे हैं और मनीष सिसोदिया को 17 महीनों से भी ज्यादा समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ी। ये सेफ क्यों खेल रही हैं अदालतें नीचे से लेकर ऊपर तक, जमानत क्यों नहीं दी जा रही है, यह कितनी बड़ी बात है। जस्टिस बीआर गवई ने कहा है कि 17 महीनों से जेल में हैं, अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुई, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को इन बातों को महत्व देना ही पड़ेगा। अपराध की प्रकृति कुछ भी हो, आर्टिकल 21 सब पर लागू होता है। अदालतें भूल गई हैं कि सजा देने के लिए जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता, जमानत ही नियम है और जेल अपवाद। अब समय आ गया है कि अदालतें इसे देखें कि जेल अपवाद है और बेल नियम है। इस केस में 493 गवाह हैं, हाल के भविष्य में भी ट्रायल के पूरा होने की कोई संभावना नजर नहीं आती।
अपीलेंट यानी कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्रायल को डिले किया है, उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो भी जो एप्लीकेशंस लगी हैं वो एप्लीकेशंस पर्टिनेंट थी, वो एप्लीकेशन जरूरी थी और तभी लगाई गई थी, ट्रायल को डिले करने के लिए नहीं लगाई गई थी, और ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है उसको डिस्कार्ड किया है। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि बेल के मामले में ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी बेल पिटीशंस ना आए।
जस्टिस बीआर गवई ने कहा है कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू का कहना कि 3 जुलाई तक जांच पूरी हो जाएगी अपने आप में विरोधाभासी बात है। 3 जुलाई से पहले ट्रायल कैसे शुरू हो सकती है? इस बात की कोई संभावना नहीं कि ट्रायल 8 महीने में पूरी होने जा रही है। जमानत की खबर आते ही मनीष सिसोदिया के घर में जश्न मनाया जाने लगा। क्यों नहीं मनाया जाता? आखिर इस परिवार ने इन 17 महीनों में क्या क्या नहीं देखा और झेला। मनीष सिसोदिया की पत्नी लगातार बीमार रहीं, कोर्ट से पैरोल पर उन्हें अपनी पत्नी की देखभाल के लिए आना पड़ा। 3 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने हफ्ते में एक दिन उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी एजेंसियों की निगरानी में। 17-18 महीने से यह शख्स जेल में रखा गया उस केस में जिसकी ट्रायल कब पूरी होगी इसका जवाब एजेंसी के पास ही नहीं। यह है भारत सरकार की उस एजेंसी का पेशेवर काम जिसे मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार से लड़ने की खुली छूट दे रखी है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ठीक कहा कि मनीष सिसोदिया को साजिशन 17 महीने जेल में रखा गया है। इसका हिसाब कौन देगा? क्या बीजेपी देगी? क्या प्रधानमंत्री देंगे? इन 17 महीनों में सिसोदिया कितना कुछ कर सकते थे? मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 के दिन सीबीआई ने गिरफ्तार किया और उसके कुछ दिनों के बाद 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। 17 महीने से जेल में हैं।
मैं संसद में इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था, मुझे पकड़ के 6 महीने जेल में रखा। तो मकसद जांच करना नहीं है, मकसद है विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया की जिंदगी के जो 17 महीने बर्बाद हुए उसका हिसाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया की पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली उसका जवाब कौन देगा?
5 अगस्त 2024 को सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस केवी विश्वनाथन ने ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि आखिर सरकारी नीति और आपराधिकता यानी क्रिमिनलिटी के बीच कहां पर रेखा खींची जाएगी? क्या सिर्फ इसलिए आपराधिकता मानी जा सकती है कि नीति में बदलाव से कुछ थोक शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचा? कोर्ट ने एक अहम सवाल पूछा है कि आप किसी नीति और भ्रष्टाचार में कैसे फर्क करते हैं? कानूनविद इंदिरा जयसिंह ने कहा है, सबसे अहम सवाल यही है इस पूरे मामले में, शराब नीति थी जिसे दिल्ली सरकार ने बनाई और वापस ले ली। मनीष सिसोदिया को 530 दिनों तक जेल में रखा गया। अब इस बात पर यह केस गिर जाता है तब तो इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? क्या इतना आसान हो गया है कि किसी को भी पकड़कर जेल में डाल दिया जाए और गोदी मीडिया से उसे अपराधी साबित कर दिया जाए? अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है तब फिर आपको झारखंड हाईकोर्ट का फैसला याद करना चाहिए। कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए सबूतों को लेकर क्या कहा था एक बार पलट कर देखना चाहिए। जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय ने कहा कि ईडी का केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्यों से भरा है। हमारे पास यह मानने के पर्याप्त कारण है कि आरोपी का कथित जुर्म में कोई हाथ नहीं है। इस आधार पर ईडी को जमानत में हार का सामना करना पड़ा कि जुर्म में आरोपी हेमंत सोरेन का कोई हाथ नहीं है। उसके बाद भी ईडी सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहां भी हार गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। आखिर किसके इशारे पर हेमंत सोरेन को 5 महीने के लिए जेल में डाला गया? इन अफसरों पर कार्रवाई कब होगी और जवाबदेही कब तय होगी?
अरविंद केजरीवाल के मामले में तो कई गुना आप आगे चले गए। ईडी कोर्ट ने जमानत दे दी बगैर ऑर्डर की कॉपी के। न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार रिहाई पे आपकी ईडी ने जाकर रोक लगवा दी और जबरदस्ती नया मामला सीबीआई का बना के केजरीवाल जी को आपने जेल में रखा है। अब भी जरा सी भी शर्म है? जरा सी भी शर्म है प्रधानमंत्री जी, तो आगे बढ़िए और इस राजनीति को खत्म कीजिए। जो हमारे नेताओं को आपने जबरन जेल में रखा है, अपनी एजेंसीज को कहिए फालतू का न्यायालय में विरोध करना बंद करें, आपके पास कोई सबूत ही नहीं है।
आम आदमी पार्टी का हाल देखकर लगता है पूरी पार्टी ही जेल में है, या जो जेल में नहीं है वो जेल में जाने वाला है, या जो जेल में जाने वाला है वो बचने के लिए बीजेपी में जाने वाला है। आखिर गृहमंत्री कैसे इस बात का जवाब देंगे? ईडी वित्त मंत्रालय के तहत आती है, वित्त मंत्री कैसे इस बात का जवाब देंगी कि उनकी जांच एजेंसी विपक्ष के नेताओं को 1.5 साल तक जेल में रखती है मगर ट्रायल पूरी करने की क्षमता नहीं रखती, इसके बाद भी हर बार जमानत का विरोध करने चली जाती है। इन सब की जवाबदेही कौन लेगा, या इसी तरह से चलता रहेगा कि किसी को भी उठाओ जेल में डाल दो, गोदी मीडिया में डिबेट कराओ, 7 महीने 8 महीने 17 महीने के लिए उसे जेल में डाल दो। आम आदमी पार्टी की नेता और मंत्री आतिशी नसीरपुर द्वारिका में मनीष सिसोदिया द्वारा बनाए गए एक नए स्कूल के उद्घाटन में बोलते हुए भावुक हो गई।
इस स्कूल के बारे में बताने से पहले मैं ना सिर्फ इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को, बल्कि मैं दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे और उनके माता पिता को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आज के इस शुभ अवसर पर दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में सत्रह महीने तक जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई।
उसने कुछ बड़ी बातें अपने फैसले में कही हैं जो मुझे लगता है पूरे देश के लिए, खासतौर पे वो जो टीवी बहस के अंदर चलता है उसके लिए एक रोशनी देने का काम करेगी। नंबर एक, कोर्ट ने कहा बेल इज अ राइट, जेल इज अ एक्सेप्शन। ये सिद्धांत है देश की कानून व्यवस्था का कि आप किसी को बेल दें वो उसका हक है, और आप उसको जेल में रखें वो एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। और यहां पे ये मामला इसलिए साबित होता है, बिना किसी कानून के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के 17 महीने तक मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं। कानून ये कहता है कि आप मुकदमा कीजिए, सबूत रखिए, गवाह रखिए, दोषी साबित कीजिए, कन्विक्शन हो, सेंटेंस कराइए, 5 साल का नहीं आप 10 साल की सेंटेंसिंग कराइए, आप जेल में रखिए, आपका स्वागत है। मगर जहां पे आपने ट्रायल ही नहीं शुरू की, साबित कुछ नहीं हुआ, वहां पे आप किसी को 17 महीने कैसे जेल में रख सकते हैं?
यह फैसला केवल मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दे रहा बल्कि जेल में रखने की तरकीबों से भी पर्दा हटा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को खुद से भी एक सवाल पूछना चाहिए कि आखिर अब इन एजेंसियों पर कब तक भरोसा किया जा सकता है? कितने ही नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र और पत्रकार कई कई साल के लिए जेल में डाले गए। पिछले 10 साल के दौरान इन्हें पहली बार ऐसी फटकार नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कि समय पर बेल मिले इसके लिए ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में क्या व्यवस्था की जा सकती है। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच से जब कहा आपने बहुत जल्दी से निर्णय दे दिया, तो जस्टिस गवई ने कहा कि स्वतंत्रता के मामले में हर दिन की गिनती होती है, उसकी कीमत होती है। इन मैटर्स ऑफ लिबर्टी एवरी डे काउंट्स। तब फिर इसका जवाब कब मिलेगा और किससे मिलेगा कि कुछ मामलों में अदालतें इन बातों को अमल में क्यों नहीं ला रही हैं, क्यों 6 महीने से लेकर 4-4 साल तक जमानत नहीं मिल रही है। दिल्ली दंगों के आरोप में गुलफिशा फातिमा, मीरन हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, उमर खालिद, शर्जिल इमाम, मोहम्मद सलीम खान, सलीम मलिक, शिफाउर रहमान, शादाब अहमद, अथर खान कब से जेल में बंद हैं? 4-4 साल से ये लोग जेल में हैं, जमानत नहीं मिल रही है। मीरन हैदर की जमानत याचिका 60 बार लिस्ट की जा चुकी है मगर सुनवाई 4 बार हुई। 20 बार तो इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि अदालत की स्पेशल बेंच का गठन नहीं हुआ। वो किस लिए? क्योंकि एक जज छुट्टी पर थे। ये चेहरे भी न्याय के उस सिद्धांत को लागू होते देखना चाहते हैं कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। जमानत टालकर या रोक कर किसी को इतनी लंबी सजा नहीं दी जा सकती है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट को इसका हल नहीं निकालना चाहिए? अगर कोर्ट को लगता है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस बुनियादी बात का ध्यान ही नहीं रखा कि जमानत देना नियम है और जेल में रखना अपवाद, तो क्या केवल टिप्पणियां की जाती रहेंगी? कितने साल तक? क्या हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी व्यवस्था नहीं कर सकता? इन फैसलों की किसी भी तरीके से समीक्षा नहीं कर सकता? आखिर इन बातों से जो कई साल जमानत के इंतजार में खराब हो जाते हैं, वो नहीं लौट पाएंगे, क्या उसका इंसाफ मिलेगा? कई साल से नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है, पुलिस और एजेंसियां बेलगाम हो चुकी हैं, खुद कोर्ट ये बात कई मामलों में कह चुका है कई बार। आखिर 17 महीने तक मनीष सिसोदिया को जेल में रखने के लिए किसी की तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया को 17 महीने के बाद बेल मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह अदालत याचिकाकर्ता को जमानत देती है, अब उसे फिर से ट्रायल कोर्ट भेजने का यही मतलब होगा कि उससे कहना कि तुम सांप सीढ़ी का खेल खेलते रहो, किसी नागरिक को इस खंभे से उस खंभे तक नहीं दौड़ाया जा सकता। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि जांच पूरी होगी और 3 जुलाई से पहले चार्जशीट दायर हो जाएगी। अब याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में भेजना न्याय का मजाक उड़ाना हो जाएगा। 4 जून को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा कि अदालत उसकी याचिका पर सुनवाई करे ना करे। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई, मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी गई। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता की समाज में गहरी जड़ें हैं, इसलिए उसके भागने का कोई खतरा नहीं। मामले में अधिकांश साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं जिन्हें पहले ही जमा किया जा चुका है, इसलिए छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं लगती। गवाहों को प्रभावित करने या उन्हें डराने की आशंका के संबंध में कोर्ट ने कहा कि शर्तें लगाई जा सकती हैं। इसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने निवेदन किया कि केजरीवाल पर जो शर्तें लागू की गई थीं वही सिसोदिया पर भी लागू हों, तो जस्टिस गवई ने कहा उनका ऐसा करने का बिल्कुल इरादा नहीं। सिसोदिया को हर सोमवार जांच अधिकारी से मिलना होगा और वे गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते। लाइव लॉ ने रिपोर्ट किया है कि फैसला सुनाए जाने के बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कोर्ट से अनुरोध किया कि अरविंद केजरीवाल मामले में लगाई गई शर्तों के समान कुछ शर्तें लगा दी जाएं, कि उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाना चाहिए। बेंच ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया। तो क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि मनीष सिसोदिया फिर से मंत्रालय जा सकते हैं, फिर से मंत्री बन सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं? 6 अगस्त को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ED से एक सवाल पूछा कि उन्हें इस केस में ट्रायल पूरा करने में कितना और समय लगेगा, इस सुरंग के आखिर में रोशनी की किरण कहां है और उसे दिखने में और कितना समय लगेगा। कोर्ट के ये शब्द हैं। जस्टिस KV विश्वनाथन ने ED की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू से कहा कि इस ट्रायल में गवाहों की संख्या 493 है, अगर आप इनमें से 50% तक गवाहों को छोड़ भी देते हैं तब भी आप इसे कब जाकर खत्म कर पाएंगे? तब मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा सीबीआई और ईडी बारी बारी से जमानत की सुनवाई को टालने में लगी हैं। एएसजी राजू ने कहा कि देरी दूसरी पार्टी के कारण हो रही है, इसमें एजेंसी का कोई दोष नहीं। इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, आरोपी तो हिरासत में है, उनके कारण कैसे देर हो सकती है। आज कोर्ट ने भी कह दिया, आरोपी के कारण ट्रायल में देरी नहीं हो रही है। कोई दलील टिक नहीं पा रही है, बस विपक्ष का नेता मिल जाए, पत्रकार मिल जाए, सामाजिक कार्यकर्ता मिल जाए, जिसे सरकार पसंद ना करती हो उसे जेल में डालकर सड़ा दिया जाए। इन तरकीबों पर अब ब्रेक लगना चाहिए, ये बहुत हो गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी की ही बात साबित होती लगती है।
ये क्या करते हैं ईडी? ईडी जाते हैं रेड करने के लिए। अरे सुनिए ना थोड़ा, 30 सेकंड। ईडी जाता है रेड करने के लिए, फोटोग्राफर को ले जाता है, फोटो खींचता है, अरेस्ट करता है, फोटो खींचता है, उसका बात तो कुछ नहीं है। ईडी आके खींच मेरी फोटो, खींच खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, खींच, और कुछ नहीं करता है ये लोग।
एक बेंच की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंच और अलग अलग जस्टिस ने ईडी एनआईए के काम को फटकारा है। उनकी टिप्पणियों से, फैसलों से यही संकेत मिल रहा है कि एजेंसियां कहीं किसी के इशारे पर तो काम नहीं कर रही हैं। इनका काम हो गया है देखो कौन सरकार के खिलाफ बोल रहा है, उसकी फाइल बनाओ, कोई सा भी मामला बनाओ, जेल में डाल दो। पिछले ही दिनों जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुयान और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच एक व्यापारी सुनील कुमार अग्रवाल की जमानत के मामले में सुनवाई कर रही थी। ईडी उनकी जमानत का विरोध कर रही थी। जस्टिस भुयान ने कहा कि ईडी ने 5000 मामले दर्ज किए हैं, लेकिन केवल 40 मामलों में सजा हुई है। कोर्ट ने इस एजेंसी को आईना दिखा दिया और यह भी कह दिया कि ईडी को अभियोजन और सबूत जुटाने की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मतलब काम ठीक से करो, सबूत ठीक से लाइए, मुकदमा ढंग से बनाइए। ये हाल है इस एजेंसी का, जिसके नाम पर हमें बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। केस दर केस ईडी सीबीआई एनआईए आईटी का यही हाल।
इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी की नेतृत्व ने, खुद माननीय मनीष सिसोदिया जी ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाले पे घोटाला करा है, विश्वासघात पर विश्वासघात करा है। माननीय मनीष सिसोदिया जी को आज जो ये बेल मिली है, ये एक प्रोसीजरल ऑर्डर है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, लेकिन इतना जरूर कहेगी कि माननीय मनीष सिसोदिया जी की दिल्ली की जनता के प्रति और कोर्ट ऑफ लॉ में जवाबदेही बरकरार रहती है।
नैतिकता की नौटंकी भी समाप्त हो गई है। जस्टिस बीआर गवई ने सांप और सीढ़ी के रूपक का इस्तेमाल किया है, यही होता दिख रहा है। न्यायपालिका का पूरा सिस्टम उसे सरकार की एजेंसियों ने सांप और सीढ़ी के खेल जैसा बना दिया है। धीरे धीरे अदालत की सीढ़ी चढ़ते हुए याचिकाकर्ता ऊपर की अदालत में पहुंचता है, जहां एजेंसी कोई ना कोई तर्क गढ़कर केस को आगे बढ़ाने में विलंब करती रहती है या उन्हें किसी और हथगंडे से फिर सबसे निचले पायदान पर ले आती है। जैसे केजरीवाल को ईडी केस में बेल मिलते ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, केस फिर से नए सिरे से निचली अदालत से शुरू। इस वक्त सीबीआई के केस में जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में है। ऐसा लगता है कि सरकारी एजेंसियों ने न्यायपालिका की प्रणाली में सेंध लगाने का एक जरिया सा ढूंढ लिया है। कोर्ट का फैसला पढ़कर इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को यह कहना बंद कर देना चाहिए कि उन्होंने इन एजेंसियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ खुली छूट दी है। अब इसी ईडी के अधिकारी घूस लेते हुए गिरफ्तार हो रहे हैं, ईडी की टीम भी पहुंच जा रही है और सीबीआई की टीम भी पहुंच जा रही है ईडी के अफसर को गिरफ्तार करने के लिए। हम भ्रष्टाचार के इस स्तर पर आ गए हैं कि जिन दो एजेंसियों को पेशेवर तरीके से सबूत जुटाकर वैज्ञानिक तरीके से केस बनाना चाहिए, वो अपने ही अधिकारी को अरेस्ट करने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन जैसी कर रही हैं। ईडी संस्था चरमरा गई है। इसके अफसर भी परेशान होंगे कि कब तक उन्हें ऐसे मामलों में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। क्या इतिहास उनका नाम पता नहीं कर लेगा कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का जाल कैसे बिछाया जा रहा था 2014 से 2024 के बीच। 100-100 साल बाद इस तरह की किताबें लिखी जाती हैं और सारे डिटेल सामने आ जाते हैं। यह कैसी संस्था है कि बार बार अदालतों के फटकार के बाद भी किसी के खिलाफ इसके भीतर कोई कार्रवाई नहीं होती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।